आयत 50 से देखेंगे। यहाँ से अब आदम और इबलीस का किस्सा दोबारा। पीछे हम तीन बार ये पढ़ चुके, ये चौथा मुकाम है जहाँ पे ये किस्सा आएगा। आइए देखते हैं आयत 50। वैस कुलना लिल मलाइकतिस जुदूली आदम, और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि सजदा करो आदम को, फिर क्या हुआ? फसजदू इल्ला इबलीस, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अगर आपको सूरत बनी इसराइल याद आ रही हो तो पीछे भी शुरू में बात की आपसे कि सूरत बनी इसराइल के भी सातवें रुकू की पहली आयत बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि यहाँ सूरत कहफ की, आदम और इबलीस का किस्सा। सात दफ़ा कुरान पाक में आता है, बाकी छः मुकामात पर तो इसका जिक्र नहीं, लेकिन इस हिस्से में आज हम देखेंगे कि यहाँ से पता चलेगा कि इबलीस जिन्नों में से था, क्योंकि कान मिनल जिन्नी, वो जिन्नात में से था। फिर क्या हुआ? फफसकन अम्री रब्बी ही, बस उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। फा जो है ना इल्लत है, इल्लत कहते हैं बीमारी को, वजह, रीजन, यानी उसकी वजह क्या थी इस चीज की कि चूंकि जिन्नात में से था इसलिए नाफरमानी का मर्तकब हुआ। मतलब यह है कि अगर फरिश्ता होता तो कभी नाफरमानी ना करता, क्योंकि फरिश्तों के बारे में अल्लाह सुभाना ताला फरमाते हैं सूरह तहरीम आयत 6 में, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और जो भी हुक्म उनको वो दे वो वही कुछ करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाए। लिहाजा अल्लाह सुभान तआला कहते हैं अफतन तखिजू नहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तो क्या तुम बनाते हो इसे और उसकी औलाद को दोस्त मेरे सिवा, हालांकि वहुम लकुम अदुव, वो तुम्हारे दुश्मन है। हमें कहा जा रहा है कि देखो जिस इबलीस की इबलीसियत वाजे है, जिसने नाफरमानी की, जिसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तुम उसकी बात मानते हो, यानी ऐसे कि जिसने अल्लाह की नहीं मानी तुम उसकी मानते हो। जानते बूझते कभी को अपने दुश्मन की बात मानता है? सोचो कि बाप के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली औलाद का क्या हाल होगा, वही होगा जो उसने बाप के हक में चाहता कि उनको जन्नत से निकाल दें तो वो तुम्हें भी निकाल देगा, और तुम्हें अल्लाह ने कितनी शान दी, अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों को तुम्हारे सामने झुका दिया, तुम्हें दुनिया की खिलाफत दी, और क्या तुम मेरी सारी बातों को छोड़कर इबलीस की बातें मानते हो? कोई बात नहीं, बिसलिज़ालिमीन बदला, क्या बुरा बदल है इन जालिमों के लिए। यहाँ बदल से मुराद अल्टरनेटिव है, लिख लीजिए, यानी तुमने क्या अल्टरनेट लिया कि नाउसबिल्ला अल्लाह का अल्टरनेट शैतान को बना लिया? क्या तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या हो गया ऐसी बातें करते हो? क्या तुम उसकी बातें करते हुए ये नहीं सोचते कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया और कितने प्यार से बनाया, कितनी मोहब्बत से बनाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दुनिया में क्या कुछ बना दिया और तुम इन चीज़ों को कोई अहमियत ही नहीं देते? चलो कोई बात नहीं, अगली बात का जवाब दो। आयत 51। माशहद तुम खलकस समावाती वलर्दी वला खल्क अनफुसिहिम, मैंने इन्हें गवाह नहीं बनाया था आसमानों और ज़मीन की तख्लीक का और ना ही इनकी अपनी तख्लीक का, यानी जिस वक्त ज़मीन और आसमान बने थे मैंने उस वक्त इन सब को खड़ा नहीं कर लिया था कि आओ देखो मैं ये बना रहा हूँ ताकि कल बाद में तुम इसकी गवाही दो, बल्कि जब इनको पैदा किया था उस वक़्त भी इनको गवाह नहीं बनाया, क्योंकि वमा कुंतु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अदुदा, मैं तो बहकाने वालों को अपना मददगार बनाने वाला ही ना था। क्या मतलब है इस आयत का? डांट की हद है कि ये जो तुम शैतान और उसके गिरोह को मेरे बराबर लाके खड़ा कर रहे हो, मुझे छोड़कर अब उसको अपना दोस्त बनाते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक और ख़ुद अपनी तख्लीक के मौके पर तुम भी गवाह नहीं हो, यानी तुम दुश्मन की बात मानकर के अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखते हो, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब क्या है? यहाँ देखिए कि ये सिर्फ शैतान का जिन होना और उसकी बात का करके आगे बढ़ जाना, असल में इशारा फिर मक्का वालों की तरफ और आज हम सब की तरफ है कि तुम शैतान की बातें मानते हो, उसको शरीक बनाते हो, उसकी बातें मानते हुए तुम्हें ये बात भूल जाती है कि दुनिया मैंने बनाई, तुम्हें मैंने पैदा किया, और एक बेबस हस्ती को पूछते हो इतनी बड़ी ज़ात को छोड़कर। तुम्हें क्या हो गया। यानी असल में ये सारा हिस्सा जो ये इंसानों की हमाकत बताई जा रही है कि चलो रब को छोड़कर किसी को पूछते, किसी खैर वाले को पूछते, तुम शैतान की बात मान रहे हो। और यहाँ देख लीजिए कि शैतान की पूजा से मुराद उसकी इतात है। सूरह फतेह से आप कोई बंदगी के तीन मानी लिखाए थे, बंदगी, इतात, वर्शिप। तो यहाँ इतात वाला शिर्क है कि तुम इतात करके उसकी इबादत करते हो, तुम्हें क्या हो गया, और ऐसी बातें करके तुम क्यों अपने आप को बुरा पेश करते हो। लिहाजा तुम अपने आप को सोचो, तुम क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और ये जो लफ्ज़ है ना, मुद्दिलीना, मुद्दिल की जमा है, दुआत लाम लाम इसका रूट है। मीम को ना डालिएगा अंदर, वो तो फाइल का है, यानी भटकाने वाला, वही लफ्ज़ है जो दुआलीन में पड़ा। और अदुदा कहते हैं मददगार को, किसी चीज़ को अपना मददगार बनाना, उससे कोई मदद ले लेना। मतलब यह है कि मैं किसी की मदद नहीं चाहता, तुम ऐसे लोगों की बात ना मानो। आगे बात चल रही है, फिर इकट्ठी इसको देख लेंगे। आयत 52, व यौम यकूलु नादू शुरका इयल्लज़ीना ज़अमतुम। और जिस दिन वो कहेगा कि पुकारो मेरे इन शरीकों को जिनका तुम्हें ज़ोम था। कौन कहेगा? अल्लाह फरमाएगा। लेकिन आप नोट करते हैं, एकदम इनडायरेक्ट सीगे में चली जाती है बात। पुराने पाक में बहुत कम जगह पे वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम आता है। अल्लाह ही ये बात कह रहा है और अपने आप को थर्ड पर्सन में पेश कर रहा है। ये एक बात की अहमियत को बढ़ाने वाला अंदाज है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं नहीं कहूँगा बल्कि वो कहेगा। यानी तुमने जिसको दूर समझा है तो फिर मैं भी उसको तुमसे दूर ही कर देता हूँ। क्यामत के दिन वो पूछेगा किधर हैं तुम्हारे वो सारे शरीक जिनके बारे में तुम्हारे गुमान थे कि ये तुम्हारी मदद करेंगे। फदाउहुम, तो वो इनको पुकारेंगे, लेकिन फलम यस्तजीबू लहुम, मगर वो इनको कोई जवाब ना दे सकेंगे। और हम क्या करेंगे? वजालना बैनहुम मौबिका, और हम इनके दरमियान हलाकत की घाटी हायल कर देंगे। ये जो मौबिका का लफ्ज़ है ना, वबका से है, वाव बाकाव, हलाक होने वाला, वाबिक, उसी से लफ्ज़ मौबिक है, जो किसी को हलाक करवाए। मतलब क्या है? ये सारी शख्सियात, चाहे अंबिया की हों, चाहे औलिया अल्लाह की हों या फरिश्तों की हों, क़्यामत के दिन इनकी बातों को मानकर और इनके पीछे चलने वालों को और इनको दूर कर दिया जाएगा। बीच में एक हाइल कर दी जाएगी चीज़, ताकि इनको पता चल जाए कि वो इनकी मदद को नहीं आएंगे। देखिए, इंसान जिनको भी पूछता है वो दो किस्म के हैं ना। एक वो हैं जो कहते हैं कि हमें पूजो, उनकी तो बात ही अलग है। यहाँ तो वो लोग भी मौजूद हैं कि जो बेचारे सारी जिंदगी तौहीद का प्रचार करते गए, इल्म की खिदमत करते गए, लोग उनके बारे में ये सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये हमारी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र ना करो कि क़यामत के दिन ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि नहीं, करना चाहेंगे भी तो हम तुम्हारे और उसके बीच में रुकावट डाल देंगे। वराल मुजरिमो नन्नार, और मुजरिम लोग आग को देखेंगे। फजन्नु अन्नहुम वाकिउहा, और वो गुमान करेंगे, जान लगेंगे, यानी इट विल लुक लाइक, उनको लगेगा ऐसा क्या कि वो तो इसमें डाले ही जाने वाले हैं। मवाकिउन था ये लफ्ज़, मवाकिउन की जमा। ये आगे भी पढ़ेंगे, सूरत वाकिया में भी आता है, शायद सूरत नजम में भी आता है, मवाकिउन नुजूम, गिरने की जगह। वक़ा कहते हैं गिरने को। ये जो लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना, वाकया ये है, तो वो भी यही है। उर्दू में बोलते हैं वकूअ पज़ीर हुई बात, वो भी इसी से है। तो वाकया, वकूअ, वाका, यानी गिर पड़ना, यानी ये मुजरिम जिनको लगेगा कि किसी भी लम्हे हमें कोई धक्का देगा और हम जहन्नुम में गिर जाएंगे। वलम यजीदू अनहा मसरिफा, और वो नहीं पाएंगे इससे बचने की कोई जगह। लेकिन सारी आयात में जो थीम निकला ना, वो शिर्क का निकला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी उस वक्त शिर्क का शिकार थे, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के रास्ते में रुकावटें डालते थे, और बहुत सारे लोग उनकी बातें मानते थे। यहाँ बीच में सिर्फ एक जुमले में इब्लीस की बात करके अल्लाह ताला ने क्या बता दिया कि ये इब्लीसियत होती है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर बंदा ना माने, तकब्बुर होता है, बड़ाई होती है। वो ही नहीं मानता जिसके दिल में अपनी बड़ाई नहीं गई। तो जितनी अल्लाह ताला की बड़ाई आती है उतनी अल्लाह की बात की भी बड़ाई आ जाती है। और यहाँ आप ये भी देखिए कि वो जिन्नों में से था, तो क्या सारे जिन इब्लीस हैं? नहीं, जिन्नों में भी अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे जिन जो होते हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जो ख़राब जिन हैं वो शयातीन कहलाते हैं, और वो दुनिया में फिर लोगों को बहकाने की कोशिशें करते हैं। अब अगली आयतों में कुरान पाक की तारीफें हैं कि किस तरह से लोग कुरान को समझते नहीं है, जबकि अल्लाह ने उसको खोल खोल के बयान किया। आयत 54, वलकत सर्रफ नफी हाजल कुरआन मिन कुल्ली मसल, और हमने फेर फेर कर बयान कर दी हैं इस कुरआन में लोगों की हिदायत के लिए हर किस्म की मिसालें। सही, यही आयत 89 सूरत बनी इसराइल में भी पढ़ चुके हैं, बार बार घुमा घुमा के। ऐसे ही है ना, क्यों कुरान में एक ही मौजू बार बार आता है? ताकि किसी वक्त हो सकता है आप उस वक्त बैग से कुछ और ढूंढ रहे थे, आपने सुना ही नहीं। उस वक्त हो सकता है आप वॉशरूम में चले गए थे, उस वक्त आप कोई फ़ोन कॉल सुन रहे थे, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, आप उस दिन छुट्टी फरमा रहे थे, अल्लाह ने कहा चलो एक दफ़ा फिर इस आयत को ले आए। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है, एक बात बार बार कौन कहता है, बार बार कौन करता है? माँ करती है। बेटा ध्यान से जाना, जैकेट पहन लेना, सड़क देख के पार करना, अच्छा पहन लिया, अच्छा खाना खा लिया। तो ये बार बार जो होती है ना, इससे चिढ़ना नहीं चाहिए, इससे मोहब्बत को महसूस करना चाहिए। और वही रब जिसने ये सब पैदा किया, जिसको सब पता है, वो बताता है वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, लेकिन इंसान तमाम मखलूक से बढ़कर झगड़ालू है। देखिए सूरह बनी इसराइल की आयत 89 के पहले हिस्से में शुरू के यही लफ्ज हैं जो इस सूरत के शुरू में, लफ्जों की तरतीब में थोड़ा सा फर्क है, दोनों आयतों के आखिरी हिस्से मुख्तलिफ हैं। बनी इसराइल की आयत के आखिर में क्या आया था आपको याद तो नहीं होगा अपने हाफ़िज़े से? फा अबा अक्सर उन्नासि इल्ला कुफूरा, बस इनकार किया अक्सर लोगों ने नफरत के साथ, या भागते ही गए। और यहाँ क्या आ गया, वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला। कौन कह रहा है? इंसान को पैदा करने वाली हस्ती बता रही है कि इंसान बड़ा झगड़ालू है, और ये सच है कि इंसान झगड़ालू है। इंसान हकीकत में अपने आप को अगर देखे ना, तो उसकी तबीयत के अंदर अपना फ़ायदा हासिल करना है, और वो झगड़ता क्यों है? ताकि मैं ज़्यादा फ़ायदा ले लूँ। बुखल की वजह से झगड़ता है, दूसरों का हिस्सा लेने के लिए झगड़ता है, इताअत से रुकने के लिए झगड़ता है। उसको लगता है कि छोड़ो, बात मान ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लिहाजा वो झगड़े 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 करना चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, हम दोनों यानी मैं और फ़ातिमा, हम दोनों को मुखातिब करके कहा, तुम लोग तहज्जुद की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? क्या हमने कभी अपने शादीशुदा बच्चों और बच्चियों को कहा जाके? हम कहते नहीं, शादी के बाद वो ससुराल का मसला हमारा नहीं है। हालांकि अल्लाह ना करे बच्ची को आग, एक दुपट्टे को आग लग जाए, तो हम नहीं कहेंगे कि ससुराल वाले आके बुझाएं, हम बुझाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी, ये इस पर एक पूरा दर्स है कि शादीशुदा औलादों को भी क्या माँ बाप दीन की तबलीग करेंगे। हमारे कहते जी हमारे घर से पहनी उड़ी गई थी, हमारे घर से वो जी पर्दों में गई थी, हमारे घर ऐसी थी, अब क्या क्या करें फिर उसका ससुराल ऐसा है। पूछ होगी, शादी कर देने से बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती। ये वो नुक्ता है जो दुनिया में आने से पहले साथ लगता है और आपके दुनिया से जाने के बाद भी रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में कह दूँ कि औलाद और माँ बाप का रिश्ता वो रिश्ता है जो दुनिया में आने से पहले ही जुड़ जाता है और हमारे दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटता। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे बच्चों की नेकियां और गुनाह अलग नहीं करेगा, अच्छा शादी से पहले के गुनाह थे डाल दो इसके पलड़े में, और शादी के बाद के हैं तो बस छोड़ दो, अब ये इसके ससुराल के पलड़े में डाल दो। तो इसको ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ क्या कहा जवाब में उन्होंने, कहते हैं मैंने जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नफ्स अल्लाह के हाथ में है, वो चाहेगा तो हम उठ जाएंगे। यानी उन्होंने ज़रा अदा से कह दिया कि अल्लाह चाहेगा तो उठा लेगा हमें। तो ये सुनकर आप फौरन वापस आ गए और अपनी रान पर हाथ रखकर फरमाया वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो आज भी तो लोग झगड़ते हैं ना, कई लोग हैं। यानी हज़रत अली ने अपने कसूर का इतराफ़ करने की बजाय कि नहीं उठे तहज्जुद पे, मशीयत इलाही को उज़र पेश कर दिया कि अच्छा भी अल्लाह ने नहीं उठाना चाहा, और उस इख्तियार की तरफ तवज्जो ना की जो अल्लाह ने इंसान को दिया। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान झगड़ालू है। और आप ज़रा अपने ऊपर भी नोक्ता कीजिए कि मैं कितनी झगड़ालू हूँ। आप डिफरेंट केसेस अपने सामने रखें जिससे आपको दिन रात में वास्ता पड़ सकता है, कभी वंस अ व्हाइल पढ़ता है, कभी मंथली पढ़ सकता है, कभी हफ्ते में एक दफ़ा, कभी दिन में एक दफ़ा। खुद से पूछें कि झगड़ा जब होने वाला होता है उस वक़्त मेरा रवैया क्या होता है। बल्कि इस पर एक सीडी भी है, झगड़े क्यों होते हैं। झगड़े अच्छे नहीं होते, इससे सुकून ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और झगड़े को प्यार में बदल दें, ढाल दें, उस वक्त बात मजाक में ले जाएं, अच्छे तरीके से ले जाएं। इसलिए कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनमें पढ़ने से ज़िंदगी का हुस्न ही खत्म हो जाता है, फिर और झगड़ा होता है। जिस बात की वजह से हम सब्र नहीं कर पाते और झगड़ जाते हैं ना, हमारी बात की वजह से फिर झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा पीसफुल रखे। अब बचपन आए तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला कोई चीज पेश कर रहा है लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। देखिएगा, वमा मना ना सईयो मिनो इस जा हुमुल हुदा, और नहीं रोका लोगों को किसी चीज ने जब इनके पास हिदायत आ गई कि वो ईमान लाए। और क्या करें, वयस्तग़फिरू रब्बहुम, और अपने रब से मगफरत मांगे। अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी से मिलती हुई आयत सूरह बनी इसराइल में 94 में भी आई थी। दोनों आयत के पहले हिस्सों के अल्फाज तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आगे आके इधर क्या कहा, इल्ला अंतातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, मगर ये कि इनसे पहलों का तरीक बरता जाए। क्या पता चला कि जो लोग हिदायत आ जाने के बाद भी ईमान नहीं ला रहे और अल्लाह के हजूर इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे, तो इसकी वजह सिवाय इसके और कुछ नहीं कि इनके लिए भी पिछली कौमों का सा अंजाम लिखा जा चुका है। यानी इनकी बदबख्ती है कि सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, सारे मौके मौजूद हैं, फिर भी ये हिदायत को लेना नहीं चाहते, या फिर इंतज़ार कर रहे हैं किस बात का, औयात यहुमुल अजाब कुबुला, या ये चाहते हैं कि इनके सामने अजाब आ जाए, इनके मुकाबले पे आ जाए, बिल्कुल इनके फ्रंट पे अजाब आ जाए और फिर मानेंगे। तो अल्लाह की तो ये सुन्नत नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के ज़िम्मे हिदायत थोप दे। गाइडेंस इज़ अ गिफ्ट, हिदायत एक हदीया है। आप किसी को कोई तोहफा दें और वो कबूल ना करें तो क्या आप ज़बरदस्ती दे देंगे? आप किसी को बड़े प्यार से कोई चीज़ पेश करें और वो आगे से मुंह फुला ले, तेवरियां चढ़ा ले, मुंह दूसरी तरफ कर ले, पुश्त फेर ले, आप देंगे उसको? आप कहेंगे नहीं लेती तो ना लो। तो क्या अल्लाह बेकदरों को हिदायत दे दे? बेकदरों को अल्लाह ताला अपना दीन दे दे? हिदायत क्या अल्लाह की किताब है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का नबी है, इस्लाम है। जिन लोगों की भी ज़िंदगी आप पढ़ेंगे ना, आप हैरान होंगे। इमाम बुखारी की ज़िंदगी से अगर आपको हैरत हो रही है ना, तो आपने तभी एक शख्सियत पढ़ी है। आप ऐसी हज़ारों शख्सियात पढ़ सकते हैं तारीख में। इनको अल्लाह ने हिदायत पेश की, इन्होंने कबूल कर ली। जो हिदायत को रिजेक्ट कर देते हैं ना, फिर उसको नहीं चाहिए होती। तो ना शुक्रे लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता, ना कदरे लोगों को नहीं देता। अल्लाह कहते हैं हमारी सुन्नत क्या है, आयत 56 में वही मजमून आगे जा रहा है, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबशिरीन व मुनजिरीन, और हम नहीं भेजते रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने वाले बनाकर। अब यहां देखिए, रसूलों के साथ जमा के सीगे में आया ना, तो सूरत बनी इसराइल में ये वाहिद में नबी सल्लम के लिए आया था कि वह मारसल ना कल्ला मुबशिरम व नज़ीरा। कभी आप खेलें कुरान की आयतों से इस तरह, अगली उधर पिछली इधर, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना उसके अंदर इंसान गौर व फिक्र करता है। हम ये देख रहे होते हैं मसाला कौन सा ख़त्म है, फ्रीज़र में गोश्त कुछ कम तो नहीं हो गया, फ्रिज ये सही ज़रा बंद होने लग गई है, इसका अंदर फिर ग्रोसरी चाहिए। और हमारे यहाँ ग्रोसरी की हद यह है कि फ्रिज को धक्का मारो पीछे से, हाथ से नहीं बंद होती, फिर उसको पीछे कमर से पुश मारो फिर बंद हो, कहते हैं शुक्र है खाना। हमारी ज़िंदगी इन चीज़ों में खो गई, हम कहाँ खो गए? अल्लाह कहते हैं हमने नबियों को जिस काम के लिए भेजा था, तुम अपनी ज़िंदगी देखो तुम क्या काम करते हो। मुबशिर और मुनज़िर, अपना नाम पूछिए, क्या मैं मुबशिरा हूँ और मुनज़िरा हूँ? ये है वो काम जिसके लिए जिंदगियां लगाईं। और आप देखें कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी उस पर लगी ना, तो अल्लाह के नबी की हदीस लिखने वालों की भी ज़िंदगियां उसी पे लगी। तो सहाबा कराम जिनको अल्लाह के नबी ने अपने बाद पीछे नायब बनाया था, उनकी भी ज़िंदगी ऐसे थी। पढ़ते जाएं, जो खुलफ़ा राशिदीन है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि किसी ने उनको ईद वाले दिन देखा तो सूखी रोटियाँ पानी में डुबो के खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ईद का दिन है और आप सूखी रोटियां खा रहे हैं, पुरानी रोटियां पानी में? तो कहते हैं कि मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मेरा रब मुझे कहेगा कि अली जा मैंने तुझे माफ़ किया। ये फ़र्क है, ये है अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वाकियात सालेहात, तरजीहात बदली हुई है। देखिए आप इस तरह समझिए कि जैसे जूता लेके आए और राइट फुट को लेफ्ट में डाल लें और फिर आपके चला ही नहीं जाता ठीक, जूती अच्छी नहीं बनाई, कंपनी खराब है, ले जाए उस जूती को वापस, और उन्हें कही आपने कैसी जूती बनाई, आप तो कह रहे थे बड़ी आरामदेह, चलना तो छोड़े मैं तो भाग सकती हूँ, लेकिन मैं तो इसको पहनती हूँ तो मैं तो दो चंद कदम पड़ती हूँ तो गिर पड़ती हूँ। वो कहेगा दिखाओ, पहन के दिखाओ। तो आप उसके सामने जरा राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में पहने, तो जवाब मिल जाएगा ना उसको कि आपने तो जूती उल्टी पहनी है। हम जूती बनाने वाले की बात इतनी मानते हैं कि वो कहता है राइट में डालो तो राइट में डालते हैं, लेफ्ट में डालो तो लेफ्ट में डालते हैं। दर्जी आपकी कमीज सीता है और वो आपको बता देता है ये कमीज का अगला हिस्सा है, ये पिछला है, आप जरा पिछला आगे करके पहने, और फिर कहीं इधर से खींचता है उधर से खींचता है। कितना यकीन है हमें दुनिया के छोटे छोटे काम करने वालों का। आज अल्लाह और उसके रसूल की दावत को हम कितना कबूल करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दअकुम, सूरह अनफाल में पढ़ चुके हैं। क्यों? लिमा युहयीकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल करो, लब्बैक कहो, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी है। जब तक मुसलमानों ने मुबशरीन और मुनजरीन के मिशन को कायम रखा, अमन था दुनिया में, चैन था और सुकून था। आज हम क्या बने? अब जरा थोड़ा सा लफ्ज देखिए, नबी मुबशर किसके लिए होते हैं? अच्छे काम करने वाले के लिए ना, और मुनजिर किसके लिए होते हैं? बुरे काम करने के लिए। अब इमेजिन कीजिए, जो शख्स बुरे काम कर रहा है, जो खुद बुरे काम कर रहा है, उस वक्त उसको नबी क्या लगेगा? नबी से मुराद दीन की दावत देने वाला अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा ना। जब कोई बंदा खुद काम नहीं कर रहा होता, अब मिसाल है तहज्जुद, नबी से सल्लम की कोई हदीस जाके बयान की जाती है कि तहज्जुद पढ़ने वालों को इतना अजर है, उस महफिल में एक तहज्जुद नहीं पढ़ता, मुझे सच बताइए कि उस हदीस को सुनकर उसको खुशी होगी? वो तो साइड पलटेगा। तो गोया कि यहाँ बाप का वो असूल उलट हो गया कि हमेशा मुनजिर बुरे काम करने वालों के लिए नहीं होते, बल्कि जो नेकियां नहीं कर रहे होते उनको भी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। यानी नबियों का बिशारत देना भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता जो खुद वो अमल नहीं कर रहे होते। आज के दौर का मुसलमानों का मसला ये है, चूंकि हम नहीं मान रहे तो हमें बताओ भी ना। अच्छा भाई कोई बता रहा है बताने दीजिए, आप ना माने कहते नहीं, फिर गिल्ट होता है, फिर ये सख्त बातें लगती हैं। बस कहो कि आज के दौर में ऐसे ही ठीक है, बस कह दो ऐसे ही ठीक है, यही होगा वही होगा। यकीन करें, अगर आप इस काम को अपनी जिंदगी का मिशन बनाएंगे ना, तो मरने के बाद भी आपका दिल नहीं मरेगा, कभी आप मुर्दा दिल नहीं होंगे। इतना रिलैक्स, इतनी खुशी, इतना कुछ कि आप सोचेंगे कि इससे भी मजे की कोई जिंदगी होगी। एक दफा आप इस मिशन के अंदर पांव रख के देखें। मैं अक्सर सोचती हूँ इस बात को, और आप भी बहुत कुछ सोचते होंगे, आपकी भी काफी काम है फिर सोचने वाले, तो मेरे भी हैं कुछ काम। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिसको एक दफा हिदायत समझ आ जाती है, अब ये पिछली आयतों के साथ इसका रब्त है, जिसको एक बार हिदायत समझ आ जाती है, फिर वो छोड़ता क्यों नहीं है उस रास्ते को? आप आजमा के देखें, जिधर भी, मैं अपनी बात नहीं करती, हमारा तो कोई इतना लंबा चौड़ा सिलसिला ही नहीं है अभी, लेकिन मैं कई लोगों को देखती हूँ कि जब कुरान पढ़ा फिर समझ आ गया, फिर वो आज 10-15 साल हो गया उन्होंने नहीं छोड़ा। वो नहीं कहते ख़त्म करो अब हमारी जॉब, छोड़ो चलते हैं इधर उधर, थक गए हैं बस, बहुत परेशान हो गए हैं, और वो इतना इंजॉय करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं। बस दफ़ा आप देखिए कि हम क्लास लेते हैं, पता नहीं आप इंजॉय करते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो ये फ़न टाइम होता है। आप तो बोझ में होंगे, ऑफकोर्स जब आप सुन रहे हैं तो आपको दिल होगा, लिखें नोट करें, सुनने वाला स्ट्रेस में होता है, मुझे पता है, मैं भी इस दौर से गुजरती हूँ और गुजरी हुई हूँ, लेकिन सुनाने वाले को ऐसे लग रहा होता है कि डिलीवर डिलीवर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अगले को सौंप दिया, ऐसे लगता है कि एक अमानत है सीने में, वो दूसरे को दे दें। और फिर इसके बाद मीटिंग्स, और इसके बाद ट्रेनिंग सेशन, और जो उसमें इंजॉयमेंट होती है, वल्लाही। आप रात को एक बहुत ही मज़े का वाक्य हुआ, मैं बाद में भी उसको सोच के हंसती रही। हमारी एक मीटिंग थी ऑनलाइन पे, सारे साथी साथ होते हैं एक जगह पे, तो वो मीटिंग थी। अब जब हम उसमें थे तो और जिनको हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसमें नहीं थी, तो मैंने पूछा कि वो नहीं है, तो जो साथी मौजूद थे उनमें से एक बोले वो उनकी बेटी रो रही होगी ना, इसलिए वो अभी नहीं आई ना। खैर मैंने कहा कि ठहर जाए, वो आ लें तो मैं आपको उनकी शिकायत लगाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो आई, तो मैंने उनका नाम लेके मैंने कहा कि मैंने आपको एक शिकायत लगानी है कि इन्होंने आपकी बेटी की बुराई की है। क्या आपकी बेटी बाकी रो रही थी? तो मैंने कहा सोचे कल क्यामत के दिन ये बच्ची आपको गिरेबान पकड़ सकती है, आपने हम एक मासूम बच्ची पे बात लगा दी कि वो रो रही होगी इसलिए उसकी अम्मी मीटिंग में नहीं आ पा रही। हम बाज़ अज़्यूम कर लेते हैं ना, तो वो एक किस्म का एक जोक वाली कैफियत बन जाती है कि कि बाज़ दफ़ा जब दीन का काम साथ लोग करते हैं और इन्जॉयमेंट होती है और इसमें जो मज़ा आता है और जो एक दूसरे का मिजाज हम पढ़ते हैं और करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये काम किसी को थकाता है या कि बोर होता है। शर्त एक है कि आप इसको अपना काम समझें, फिर आप देखेंगे कि इस काम के क्या मज़े हैं और फिर आप कभी भी छोड़ने का तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जो नबियों को मिशन दिया होता है वो तो मिशन उन्होंने पूरा कर दिया। क्या आज हम भी इंसानियत के लिए मुबशरीन और मंजरीन का किरदार अदा कर रहे हैं? खुद से पूछिए। एक रिवायत का खुलासा है कि किसी के सामने एक हक बात हो रही हो और वो उस हक पता और ना बताए, या गलत हो और उसको ना मना करे, तो वो गूंगा शैतान है। यदि गूंगा शैतान कहते हैं उस शख्स को जो हक को छुपा लेता है। आज हम किन किन जगहों पे जाके मजबूर हो जाते हैं और लोगों को हक से दूर करते हैं। आज सिर्फ उम्मत मुस्लिमा सिर्फ इस एक काम पे बात कर ले कि लोगों को उनकी ज़िंदगी का मकसद और इस तरह की बातें बता दें, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका क्या नतीजा हो सकता है। यदि ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं, या फिर एक बात और जहन में आ गई, चंद दिन पहले किसी ने शेयर की कि एक शख्स तो गुजरा था तो उसको कोई दीन की दावत दी, तो उसके बाद एक औरत पीछे से आई, उसके पास मतलब बच्चा भी था शायद, तो सारी बात का खुलासा क्या निकला, कहने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुस्लिम है। एक लड़की जिसको दीन की दावत दी जा रही थी, कहने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुस्लिम है और उसने भी मुझे काफ़ी दफ़ा इस्लाम के बारे में बताया है और ये बच्चा भी उसी का। कैन यू बिलीव, समझिए बात को, कैसा इस्लाम है ये अच्छा हमारा। और उस औरत को कल वो हमारे घर के पास नीचे आई, तो उसको हमने कुछ बुक्स वगैरह दी, इतनी उसको अर्ज लग गई कि अच्छा मुझे बुक्स ने, फिर कल उसने फ़ोन पे मैसेज पे टेक्सटिंग थी, उसको कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए थी, तो नीचे लाइब्रेरी में आई तो हमने उसको कुछ बुक्स दी। यानी जब हम इस्लाम का रंग बिरंगा नमूना पेश करते हैं तो लोग कभी भी नहीं आपके पास आएंगे। सोचिए, ये बहुत बड़ा रोग है इस वक्त उम्मत को लगा हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं नबियों के साथ क्या हुआ, वो युजादिलुल्लज़ीना कफरू बिल बातिल, और ये काफिर लोग झगड़ते हैं झूठ की तरफ से, यानी साइड लेते हैं झूठ की, ये मुराद है। बिल बातिल है ना, तो बा साथ के लिए होता है, उसके हक में झगड़ते हैं, किसके, बातिल के। क्यों, लियुदखिदु बिहिल हक का, ताकि फिसला दें इसके साथ हक को। यानी बातिल लोगों को तो देखें कितना अच्छा काम करना आता है कि जहां जरा हक बात आती है वो सारे मिलके हक को पीछे धक्का दे देते हैं ताकि हक भाग जाए। कट हुजतियां, बहसें, चैलेंजेस और इस्लाम पे इल्ज़ाम, नबी पे इल्ज़ाम करते हैं ताकि हक चला जाए, हक चला जाए, हक चला जाए। और वत्तखज़ु आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुआ, और उन्होंने मेरी आयात को और इस चीज़ को जिसके साथ इन्हें खबरदार किया गया था मजाक बना लिया। यानी इतनी ज़रूरत है इन काफिरों की कि अल्लाह के कलाम की आयात को मजाक बनाते हैं। क्या मैं और आप अपना मजाक उड़वा सकते हैं? क्या हम अपनी बात का मजाक उड़वा सकते हैं? हमें पता लग जाए ना कोई बात में आपके जाने के बाद आपका मजाक उड़ा रहा था, आपके बोलने का अंदाज, आपके बैठने का, आपके पहनने का, आपके कपड़ों का, तो हम कहेंगे अच्छा वैसा है, ये तो शुक्र है हमें पता ही नहीं है लोग हमारे बारे में कहते क्या कुछ और सोचते क्या है और आपस में जिक्र क्या करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अल्लाह को तो सब पता होता है। जब लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह की बातों को इस तरह हंसी मजाक करते हैं, तो क्या फिर अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आता होगा? ये किस किस्म का आप इस्लाम लोगों को दिखाते हैं कि आप उनके साथ अपने नफ्स की ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, आप उनके साथ अपना भी सारा शौक पूरा करते हैं और फिर कहते हैं यह सिर्फ इस्लाम, ये इस्लाम का मजाक है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं वमन असलमु मिम्मन ज़ुक्किर बिही आयाति रब्बिही। अब यहाँ से सबक का ततिम है। अल्लाह फरमाते हैं और इस शख्स से बढ़कर और जालिम कौन होगा जिसको नसीहत की गई हो इसके रब की आयात के जरिए से। यानी जिसको कुरान से रब की आयात के जरिए समझा दिया फिर ना माने, फारदनहा, तो इसने एराज किया, वह नसीह मा कद्दमत यदा, और वो इसे भूल गया कि क्या आगे भेजा है इसके दोनों हाथों ने। क्या समझे, बजाय इसके कि ईमान लाए, पिछले गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की आयतों को माने, उससे रूगर्दानी को छोड़े और जिद में आ गया, हठ धर्मी में आ गया कि अपने अमाल के अंदर और खराबियां पैदा करने लगा, तो फरमाया ये इस बात की दलील है कि इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, यकीनन हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं। अकिन्ना किनान की जमा, पर्दा, कर्टन। दिल पे जो पर्दा आता है ना, किस बात का, आई यफ़क़हू, कि वो इसको समझे। वफ़ी आज़ानिहिम वक़्रा, और इनके कानों में बोझ है, वक़्र गिरानी, बोझ, हैवीनेस। बिल्कुल यही बात सूरह बनी इसराइल की आयत 45 में हम पढ़ चुके हैं, वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैन अल्लज़ीन ला युमिनून बिलआख़िरति हिजाबं मस्तूरा, कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दरमियान पर्दा हायल कर देते हैं। तो जो नहीं सुनता ना, उसको सुनना मुश्किल लगता है, जो अमल नहीं करता उसको पढ़ना भी मुश्किल लगता है, हाल क्या इनका हो जाता है। वइन तदउहुम इलल हुदा, और अगर आप बुलाएं इनको हिदायत की तरफ भी, फलन यहतदू इज़न अबदा, तब भी वो कभी हिदायत नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि हक वाजे होने के बाद जब बंदा हठधर्मी इख्तियार करता है ना, तो दिल पे मोहर लगती है। आसान करके समझाऊं, 15 पारे आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिए, जो हकीकत मेरे और आपके ऊपर खुल चुकी है ना, ये बाहर वालों पे अभी नहीं खुली जो यहाँ नहीं आए, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा। अब मैं और आप इस हक को वाजे होने के बाद भी अगर रिजेक्ट करें, ओवरलुक करें, अमल ना करें, तो दिल पे मोहर लग जाएगी। और मोहर लगना ऐसे जैसे खाना पेट में फंस गया, पेट से निकल ही नहीं रहा तो और कैसे डलेगा। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, भूख क्यों नहीं लगती, क्योंकि पेट से गंदगी नहीं जा रही। जब कुरान की बातों को सुनकर उस पे अमल नहीं करते, आगे से लेने को दिल ही नहीं करता, फिर बोझ लगता है, फिर कहते हैं मुश्किल लगता है, हमें लगता है सब कुछ हमें सुनाते हैं, ये बहुत जजमेंटल कुरान है, ये कुरान बहुत सख्त है, टू मच है, हमें नरम कुरान चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, सब कुछ डाल के ब्लेंडर में स्मूदी बनाया हुआ कुरान चाहिए, ये बहुत मुश्किल, ये हम नहीं कर सकते। और शैतान को सबसे ज़्यादा इल्म बुरा लगता है, किताब का पढ़ना बुरा नहीं लगता, हिफ्ज़ करना बुरा नहीं लगता, उसकी आयतों को खूबसूरत तरह से लिखना बुरा नहीं लगता, उसको किताब का पढ़ना बुरा लगता है। और ऐसे लोग फिर हिदायत से दूर रह जाते हैं, फिर बच्चे भी कैसे हैं अल्लाह की रहमत से। इसीलिए अगली आयतों में रहमत का जिक्र है, आयत 58, व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और आपका रब बहुत बख्शने वाला, बहुत रहमत वाला है। लो युआख़िज़ुहुम बिमा कसबू, अगर वो पकड़ ले इनको इनके कामों पर, या इनका मुआख़ज़ा करता इनके आमाल की वजह से, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो बहुत जल्दी भेज देता इन पर अज़ाब। जैसे माँ बर्दाश्त नहीं करती ना बच्चे की गलती पे, झट से थप्पड़ मारती है ना, अगर अल्लाह रहम वाला ना होता ना, तो इधर किसी ने बुरा काम किया, ऊपर से एक कोड़ा पड़ता, एक थप्पड़ पड़ता, हंटर पड़ता, ऐसा नहीं करता अल्लाह, क्योंकि वो ज़ू रहम है, गफूर है, अल गफूर है, रहमत वाला है। यही बात सूरह नहल आयत 61 और फातिर 45 में भी आती है, कि अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म और बुरे आमाल पर पकड़ने लग जाता, तो ज़मीन पे तो एक जीता हुआ शख्स ना रहे। बल लहुम मौईदु यजिदु मिन दूनिही मौईला, बल्कि इनके लिए वादे का एक वक्त मुअय्यन है, और वो हरगिज़ नहीं पाएंगे इसके सिवा बचने की कोई जगह। क्यों अल्लाह इनको ढील दे रहा है, कि अभी इनकी पकड़ का वक्त ही नहीं आया। ये जो लफ्ज है ना मौइला, वाल से वाव हमजा लाम, इसम ज़र्फ़ है, कि जब किसी के वादे की मुकर्रर घड़ी अजल आ जाएगी, फिर इसे कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी कि इससे सिरक कर इधर से उधर हो जाए, क्योंकि सूरह नहल आयत 61 में भी हम पढ़ चुके, फैजा जा जलुहम ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तकदिमून, और जब आ जाता है इनमें से किसी का वक्त मुअय्यन, तो ना वो पीछे रह सकते हैं एक लम्हा, और ना आगे बढ़ सकते हैं। तो पता क्या चला इस आयत से, कि लोगों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह उनको भी क्यों नहीं पकड़ रहा, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया। एक वजह अल्लाह गफूर है, दूसरी वजह रहीम है, दूसरी वजह कि उसके पास हर चीज़ का एक वक्त होता है। और आखिरी आयत में इसको अमली तौर पर दिखा दिया, कि व तिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, और ये हैं वो बस्तियां जिनके बासियों को हमने हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म इख्तियार किया। कौन सी बस्तियां? कौम आद की बस्तियां जो अहकाफ में बसती थी, अलाका हिजर के लोग हों या एका के लोग हों, आमूरा और सदूम के लोग हों, सब अल्लाह के इस कानून की वजह से हलाक हो गए। व जालना अली महलिकिहिम मौईदा, और हमने मुकर्रर कर दिया था इनकी हलाकत के लिए वादे का एक वक्त। تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دو طرح سے آتی ہے، ایک ہوتی ہے انفرادی پکڑ، ایک ہوتی ہے اجتماعی پکڑ۔ انفرادی پکڑ تو ہر وقت آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرسنل لیول پہ ہر بندے کو اس کے گناہوں کی سزا فوراً دیتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی یعنی قومی طور پہ ایز اے نیشن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی عمر 50-60 سال تو ہوتی ہے ساری، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں ہمیں جلدی سے پکڑ لیتے ہیں۔ قوموں کو اللہ بعد وقت 100-100، 200-200 سال کی مہلت دیتا ہے، اور کہہ لیجئے کہ اس وقت ہم امت مسلمہ کی مہلت کے سالوں میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو تھپیڑے پڑتے ہیں نا، کبھی سیلاب کے اور کبھی لڑائیوں کے اور کبھی سیاستدانوں کے جھگڑے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عذاب کی قسطیں ہیں۔ سمجھ جائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، نہیں سمجھیں گے تو نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا دل کھول دے۔ ہم کس طرح سے اس دنیا کے دجل میں آئے ہوئے ہیں، سیکھنا کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، باقیات و صالحات میں ڈھال دیں، اپنے آپ کو جس انگل سے بھی چھان پھٹک سکتے ہیں نا پھٹک لیں۔ خاصا چونکہ اس میں نام اعمال کی باتیں آئیں، آخرت کی باتیں آئیں، تو ان ساری چیزوں کو سننے کے لیے چند روایات بس اینڈ پہ شیئر کروں گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سبق پورا ہو جائے گا۔ یہ ساری روایت میں نے وہاں اس لیے نہیں نوٹ کرائی تھی کہ پھر وہ آیت کی تفسیر بہت لمبی ہوتی ہے، تو اب اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو سن لے، نہیں دل چاہتا تو چھوڑیں۔ لیکن آیت 49 میں ہم پڑھ چکے، وبودی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی، بس آپ دیکھیں گے کتاب نام اعمال کو، اور مجرم ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور وہ کہیں گے ہائے بربادی ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ جس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، مگر اس کو لکھ لیا، جمع کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ حاضر پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، غزوہ حنین سے فارغ ہو کر ہم چلے، ایک میدان میں رکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جاؤ جسے کوئی لکڑی، کوئی کوڑا، کوئی گھاس پھونس مل جائے لے آؤ۔ ہم سب ادھر ادھر گئے، اور چھال، لکڑی، پتے، کانٹے، دھار، درخت، جھاڑ، جنگل، جو ملا لے کر آ گئے۔ ڈھیر لگ گیا، آپ سوچیں نا، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آ گئے تو ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھ رہے ہو، اسی طرح گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو، کیونکہ سب لکھے جا رہے ہیں اور شمار کیے جا رہے ہیں۔ جو خیر اور شر، بھلائی اور برائی جس کسی نے کی ہوگی، اسے موجود پائے گا۔ یوم تجد کل نفس، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ قیامت میں بھی آتا ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ایک جگہ تھا یوم تبلی السرائر، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر بدعہد کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اس کی بدعہدی کے مطابق جس سے اس کی پہچان ہو جائے گی۔ یعنی جو لوگ وعدے توڑتے ہیں، کمٹمنٹس توڑتے ہیں، عہد چکنیاں کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا جتنی بدعہدی کی ہوگی۔ حدیث میں کہ یہ جھنڈا اس کی رانوں کے پاس ہوگا، یعنی تھائیس کے پاس، اور اعلان ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی ہے، تیرا رب ایسا نہیں کہ مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم کرے، حال بتا درگزر کرنا، معاف کر دینا، عفو کرنا، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ بدکاروں کو بھی اپنی قدرت اور حکمت اور عدل سے سزا دیتا ہے۔ جہنم گناہگاروں اور نافرمانوں سے بھر جائے، اور کافروں اور مشرکوں کے سوا اور مومن گناہگار چھوٹ جائیں، اللہ ذرا بھی زیادتی نہیں کرتا۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے ایک روایت پہنچی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا، علم کا سفر اگلے سبق میں ہی آ رہی ہے یہ بات۔ ایک حدیث سننے کے لیے نکلے، میں نے اس حدیث کو خاص ان سے سننے کے لیے، حدیث پہلے سن لی تھی لیکن حدیث کی چین میں اپنے نام کو ڈائریکٹ قریب کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا، سامان کس کر سفر کیا، مہینہ بھر کے بعد شام میں ان کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے دربان سے کہا، خبر کر دو کہ جابر دروازے پر آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جابر بن عبداللہ، میں نے کہا جی ہاں۔ یہ سنتے جلدی کے مارے چادر سنبھالتے ہوئے جھٹ سے باہر آ گئے اور مجھے لپٹ گئے اور معانقہ کیا، یعنی حق دیا۔ فارغ ہو کر میں نے کہا، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ نے قصاص کے بارے میں کوئی حدیث رسول اللہ سے سنی ہے، تو میں نے چاہا کہ خود آپ سے میں وہ حدیث سن لوں، اس لیے یہاں آیا ہوں، اور سنتے ہی سفر شروع کر دیا اس خوف سے کہ کہیں اس حدیث کے سننے سے پہلے میں مر نہ جاؤں یا آپ کو موت نہ آ جائے، یعنی ہم دو میں سے کوئی ایک مر گیا تو میں محروم رہ جاؤں گا اس چیز سے کہ میرا نام اس میں آ جائے۔ اب آپ سنائیے وہ حدیث کیا ہے، اتنا شوق آج علم کا، اب حدیث سنیں تو پھر آپ کو اور بھی شوق آئے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے تمام بندوں کا اپنے سامنے حشر کرے گا، یعنی بالکل اپنے سامنے اکٹھا کرے گا، ننگے بدن، بے ختنہ، بے سر و سامان، پھر انہیں ندا کرے گا جسے دور اور نزدیک والے سب یکساں سنیں گے، یعنی یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے بھی برابر سنیں گے، اور فرمائے گا، میں مالک ہوں، میں بدلے دلوانے والا ہوں، کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک اس کا جو حق کسی جنتی کے ذمے ہو میں اس کو وہ نہ دلوا دوں، یعنی وہ جنت میں جا رہا ہے لیکن پہلے حق پورے کروائے گا اور یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور نہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا حق جو جہنمی پر میں نہ دلواؤں گویا کہ وہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے کہا، اللہ کے نبی، یہ حق کیسے دلوائے جائیں گے حالانکہ ہم سب تو وہاں ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے مال اور بے اسباب ہوں گے، یعنی ہے ہی کچھ نہیں کہ بدلے میں دیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں اس دن حق نیکیوں اور برائیوں سے ادا کیے جائیں گے، وہاں نیکیوں کو ادھر ادھر پلٹایا جائے گا۔ فرمایا آپ نے کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ دار بکری نے مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کریں گے کل قیامت کے دن وہاں نظر آئے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو بہت سوچ کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، یقین کریں، اب تو زبانوں کو سی دیں، ہونٹوں کو زپ لگا دیں، کم بولیں، غور کریں، بریک میں بھی، کھانے میں بھی، باتوں میں غور و فکر کی عادت ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔